हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया, येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदितासि न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि, स्वलक्षणा प्रा दुर्बुद्धिलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुष, भुङ्क्ति गुणनिशो दशषोडशात्मक, सोलङ्कृशिष्ठ भगवान् वचांसि मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की से दूसरा स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। नारद जी ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में किस प्रकार से भगवान से तीन विष्णु प्रकट होते हैं, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और क्षीर दक्षाय विष्णु और महत्तत्व। ये महत्तत्व में जो 24 चीजें हैं उनके विषय में बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने श्लोक नंबर 23 में बताया, महतस्तु विकृणाद्रज सत्वो ब्रीहितात्। महतस्तु विकृवारात् रजः सत्त्वो पब्रीहितात् तमः प्रदानस्त्वभद् भवद् द्रव्यज्ञान क्रियात्मका। के महतत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रिया उत्पन्न होती है। महतत्व जो है वो जब क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, तो सारे कार्य होने लगते हैं। सर्वप्रथम सत्तो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। अब ये भौतिक जगत किस लिए प्रकट हुआ? तमोगुण के कारण। पहले तो सबसे पहले तो रजोगुण और सत्तोगुण का रूपांतरण होता है और ये सब कुछ भी है, जो कुछ भी संसार में है वो तमोगुण के कारण, चाहे पदार्थ हो, पदार्थ का ज्ञान हो या भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप, ये सब तमोगुण। तमोगुण क्या है? वो है मोह, कि हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं महत्तत्व में आकर, और उसके कारण जो कुछ भी यहाँ भौतिक जगत में जो कि हमारे साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, हम नितांत आध्यात्मिक हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारे इसके साथ संबंध ना होने के बावजूद भी हर एक वस्तु हमें हमारी लगती है, हमें हमसे संबंधित लगती है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव महत्तत्व में आ गए और तमोगुण का प्रभाव हो गया और हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं। सोहंकार इति प्रोक्तो विक्रुवन समभूतिधा वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिर इति प्रभु। सोहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्प्रिधा वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभु। शब्दार्थ सोहंकार इति प्रोक्तो, सो मतलब वही अहंकार, अहंकार इति प्रोक्तो इस प्रकार कहा गया है। वही अहंकार क्या करता है? विक्रुवन सम भूत त्रिधा, विक्रुवन मतलब भूतान रूपांतर हो जाता है, विकृत हो जाता है, जो हमारा रियल अहंकार है वो विकृत हो जाता है और उससे क्या होता है? समभूत, समभूत त्रिविधा, त्रिधा तीन रूपों में हमारा अहंकार जो है वो रूपांतरित हो जाता है। और वैकारिक, वैकारिक मतलब सत्वगुण में, तेजस अर्थात रजोगुण में और तामस अर्थात तमोगुण में, जो हमारा अहंकार है जो शुद्ध है लेकिन महतत्व में भौतिक जगत में आने के बाद वो तीन रूपों में रूपांतरित हो जाता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में। च इति इस प्रकार, यद्विधा मतलब जो है विभक्त, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है किसमें? द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभु। द्रव्य शक्ति मतलब पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, भौतिक वस्तुएं जितनी भी है पदार्थ है वो द्रव्य शक्ति है। क्रिया शक्ति मतलब सृजन करने की प्रेरणा, कार्य करने की इच्छा जो हृदय में होती है वो। और ज्ञान शक्ति अर्थात मार्गदर्शक बुद्धि, ये जो तीन चीजें हैं सत्वगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से ये प्रकट होती हैं। इति प्रभु हे स्वामी। अनुवाद देखिए, इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं। पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टि का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। ईश्वर का ज्ञान एक अलग बात है, वो जो है वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान होता है, लेकिन जो भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ जो पहचान का जो भाव होता है वो भौतिकतावादी अहंकार होता है। और भौतिकतावादी जीव का यह आत्म केंद्र अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। क्या कारण होता है, किसका कारण होता है ये भौतिकतावादी जीवों का यह आत्म केंद्रित अहंकार दूसरी वस्तुओं के द्वारा संसार में संसार का जो बंधन है उसमें पड़े रहने का कारण होता है। एक यही कारण होता है, संसार में हम कभी बंधते क्यों हैं? क्योंकि अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और अहंकार होने लगता है मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से रिलेटेड हर एक वस्तु और व्यक्ति मेरे हैं। यही तो हमारे बंधन का कारण है, यही तो हमारा अहंकार है जो हमें अपनी वास्तविकता को पहचानने में बाधा बनता है, भगवान को सरेंडर करने में बाधा बनता है, क्योंकि भौतिक आसक्ति ही तो हमें भगवान से दूर लेकर जाती है। तो ये संसार में पड़े रहने का कारण होता है। और यह आत्म केंद्रित अहंकार श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय में श्लोक नंबर 24 से 27 तक भली भांति समझाया गया है। गीता के सातवें अध्याय जिसका नाम है भगवत ज्ञान, उसमें भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। 25 नहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। 26 वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। 27 इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गेयन्ति परन्तप।
हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह आत्म केंद्रित अहंकार भगवत गीता के सातवें अध्याय के 24 से 27 में भली भांति समझाया गया है। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी यह ब्राह्मण धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्म सूत्र तथा अन्य भौतिक ज्ञान के स्तोत्र समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत हो। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो आत्म केंद्रित अहंकार होता है उसमें जीव न अपनी रियलिटी को समझता है और न ही भगवान की रियलिटी को समझता है। वो भगवान के व्यक्तित्व की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष के लिए अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक रूप ग्रहण करते हैं। वो सोचता है असल में तो भगवान क्या है, निर्विशेष है, निराकार है, लेकिन कोई एक उद्देश्य से भगवान एक स्वरूप भौतिक जगत में प्रकट करते हैं और स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी की भगवान संबंधी या भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है। फिर वो हमेशा चाहे कितने ही वेदों को, शास्त्रों को, ब्रह्म सूत्रों को समझ पढ़ जाता है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद भगवान के साकार रूप के प्रति अज्ञान नहीं रहता है, उसको याद नहीं रहता भगवान, क्योंकि वो उसके पास जो अहंकार होता है ना वो मिथ्या अहंकार होता है। हाँ, अपने आप को समझे कि मैं आत्मा हूँ और फिर भगवान को समझे कि मैं भगवान का अंश हूँ और उसके बाद ये समझे कि भगवान कौन है, लेकिन वो क्या करता है, भगवान के साकार रूप के प्रति अज्ञानता विभिन्न गुणों से मिश्रण को ना जानने के कारण है। क्यों क्यों है था? क्योंकि ये जो गुण है ना प्रकृति के, उसके कारण वो अपनी रियलिटी को नहीं समझ पाता। तमोगुण उसे वैसे ही मोहग्रस्त कर देता है रजोगुण से, वो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ और मुझे इसको आनंदित करना है। सत्वगुण से वो ये सोचता है कि इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए वैदिक ज्ञान प्राप्त करके, स्वर्ग को प्राप्त करके वहां हमें एक असीम मात्रा में आनंद प्राप्त करना है। तो ये सब गुणों के कारण है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। वो जो सच्चित आनंद है, शाश्वत अस्तित्व ज्ञानमय तथा आनंदमय, इस सनातन आध्यात्मिक रूप में भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे किस अभक्त के समक्ष प्रकट ना हो। भगवान की मर्जी है ना, भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से प्रकट भई में जाना, वो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्ञानी हो, भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं, भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर कितनी भौतिक बुद्धि है। भगवान तो केवल प्रेम से प्रकट होते हैं। जिनके अंदर प्रेम होता है ना, साच से कहूं सुन लो सभी, प्रेम कयो तिन्ही प्रभु पायो। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक ही क्वालिटी होनी है कि आप भगवान से कितना प्यार करते हो, भगवान का कितना प्रेम से भगवान का भजन करते हो, कितना प्रेम से भगवान को भोग लगाते हो। भगवान को क्या भूख है,
भगवान को क्या ये हम जो रूखा सूखा खिलाते हैं उनके लिए परेशान है? अगर हम नहीं खिलाएंगे तो भगवान भूखे रह जाएंगे। करोड़ों करोड़ों जीव हैं संसार में और प्रत्येक जीव को खिलाने वाला ये फल फूल ये सब किसने अनाज वगैरह बनाए हैं? पृथ्वी से। और पृथ्वी किसने बनाई है? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है। तो प्रत्येक जीव के प्रत्येक अंश को खिलाने वाले भगवान क्या हमारे छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए परेशान होंगे कि ये हमें नहीं खिला रहे? एक फूल एक फल एक पानी का गिलास ही तो मांगा, क्या भगवान के पास भगवान इतने गरीब हैं कि उनके पास इतनी छोटी छोटी वस्तुएं भी नहीं है? क्या देती थी गोपी भगवान को बताओ? क्या खिलाया, क्या क्या लोभ दिया गोपी ने कि तुम मुझे क्या करके दिखाओ, तुम मुझे नाच के दिखाओ, मैं तुम्हें क्या लूंगी? माखन खिलाऊंगी। मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी? क्या कृष्ण के पास माखन नहीं था? नंद बाबा के पास करोड़ों गायें थी और उनके पास जो पद्मगंधा गाय जो सबसे ज्यादा सुगंधित दूध देती थी उसका माखन यशोदा मैया बनाती थी कन्हैया के लिए, और कन्हैया फिर भी उस माखन के लोंदे के लिए गोपियों की ताल पर नाचने के लिए तैयार हो जाते थे। क्यों? भक्तों, भगवान को वस्तु की नहीं प्रेम की इच्छा है। तो ये अधिकार भगवान का अपने पास सुरक्षित है कि वो किसको किसके सामने प्रकट होना चाहते हैं, किसे अपने आप को जनवाना चाहते हैं। ये भगवान का अधिकार है कि वो किस ऐसी बुद्धि दे जिससे वो उसे समझ सके। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश यानी मूढ़तावश निर्विशेषवादी बने रहते हैं, यह दुराग्रह भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करता है। जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं तो योग माया उनको उसी अंधकार में ग्रस्त कर देती है। वो भगवान को जानना नहीं चाहते हैं तो भगवान उनको ऐसा ही अवसर प्रदान करते हैं कि वो भगवान को जान भी नहीं पाते हैं। इच्छा पर हर चीज डिपेंड करती है। जीव का केवल एक ही अधिकार है कि वो इच्छा करे कि मैं कृष्ण को जानना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को पाना चाहता हूँ, मैं कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। ये इच्छा जीव के हृदय में प्रकट हो जाए ना, बस आगे सब कुछ कृष्ण ही प्रोवाइड करेंगे। आप यदि भगवान को समझना चाहते हो, आप यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो बस भगवान के सम्मुख होकर सिंसियरिटी के साथ भगवान से याचना करो कि भगवान मैं कैसे तुम्हें प्राप्त करूं, मैं कैसे तुम्हें जानूं, मैं कैसे तुम्हारी सेवा करूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। भगवान सब दे देंगे, भगवान सर्कमस्टेंसेस को ऐसा बना देंगे, भगवान आपके अंदर ऐसी योग्यता प्रोवाइड कर देंगे, भगवान आपको ऐसा अवसर ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, भगवान आपको ऐसे संत से मिला देंगे जो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। बस इच्छा तो करो। लेकिन जब हमारी इच्छा नहीं होती है तो भगवान भी हमारे सामने प्रकट नहीं होते। भगवान को कोई इच्छा नहीं है, वो तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल देते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करती है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने में असमर्थ होता है। वो सोचता है कि ये जो जन्म लेता है वो भगवान कैसे हो सकता है, ये जो यहाँ संसार में आकर 125 साल रहता है फिर मृत्यु हो जाती है वो अक्षर कैसे होता है? तो भगवान ने कहा जन्म कर्म समय दिव्यम, तो वो इस दिव्यता को नहीं समझ पाता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष पहलू से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं
तो इसका अर्थ यह होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भगवान, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा होता, निर्विशेष होता, और भौतिक आकार ग्रहण करते बाद में भगवान, तो इसका मतलब है वो जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन भगवान तो पूर्ण है ना, भगवान में कभी भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं है, ना ही वे बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म लेते हैं। नया जन्म ऐसा नहीं है कि भगवान का आज या जन्म हुआ 5000 साल पहले, अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र भाद्रपाश इस समय भगवान का जन्म हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो भगवान है, वो अवतार लेते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। यदि भी वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े कहलाते हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे बद्ध जीवों की भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को भली भांति जानते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा पहलू को जान लेने के बाद भी अनेक उनके नित्य साकार रूप नारायण से, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे है, अनजान रहते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे कि जन्म किसका होता है, हमारा होता है। एक जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म लेते हैं, बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो परिवर्तित होती है, एक जन्म से दूसरे एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह से ट्रांसफर हो जाती है जैसे मनुष्य नए कपड़े धारण करता है। तो बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन स्वकेंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानता अहंकार के वश के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही जन्म ले रहे हैं। यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े हुए कहलाते हैं, वो सोचते हैं भाई हमें तो बहुत ज्यादा जानकारी है, वेदांत पढ़ा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे बद्ध जीवों की भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को भली भांति जानते हैं। भगवान जानते हैं कि भले उनको कितना ही ज्ञान हो जाए, लेकिन ज्ञान होने से वेदों के पढ़ने से भगवान को समझा ही नहीं जा सकता, तो उनका मोह सदैव बना रहता है। लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें अनेक उनके शाश्वत रूप में जान सके, तो मोहग्रस्त व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं जान सकता है। वो भले ही भगवान के ब्रह्मा तथा परमात्मा पहलू को जान भी लें, लेकिन साकार रूप में जो भगवान का स्वरूप है उसमें वो भगवान को स्वीकार ही नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं 9.11 में, अवजानंति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ तो जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जानते, वो मेरा उपहास करते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे निपट अज्ञानता यानी मूढ़ता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाले भौतिक मांगों में लगे रहना है। बस ये मूर्ता क्यों है, ये अज्ञानता क्यों है, क्योंकि हम इतने भौतिकतावादी मेटेरियल टाइप के लोग हो हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं ना, और शरीर को ही मांगों को पूरा करने के लिए सारा दिन परे रहते हैं। इसीलिए हम भगवान को भी ऐसा ही समझते हैं, भगवान ऐसा ही, वास्तव में जो भगवान है उसका शरीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर होगा तो मांगें बढ़ेंगी, वो तो निर्विशेष होना चाहिए। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। हमारी ये कुंठित, ये कुलुषित, ये अपवित्र इंद्रियां भगवान को समझने में असमर्थ है। तो यदि भगवान को समझना है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों को शुद्ध बनाना होगा। अपनी यह कैसे भगवान की अनुभूति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा के द्वारा, जब भगवान की सेवा करेंगे, याद रखिएगा यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं केवल किसी को दिखाने के लिए या फिर कोई और लालच से, तो वो सेवा हमें शुद्ध नहीं बनाएगी। यदि शुद्ध बनना है तो वो सेवा कैसी होनी चाहिए? भक्तिमय सेवा, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो भक्तिमय सेवा के द्वारा भौतिकवादी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। सत्वगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ब्राह्मण संस्कृति के होते हैं वो ज्यादातर सत्वगुण में होते हैं, और ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति की अनुभूति क्या है कि भगवान के विषय में हम जान सकें, भगवान को समझ सकें, भगवान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकें। तो ये क्यों, कैसे होगा? यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्वगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसे आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होगी। इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं यानी इंद्रिय शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। द्रव्य शक्ति अथवा और क्रिया शक्ति। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था, जो बद्ध जीव है उसकी जो ज्ञान शक्ति अवस्था है, अन्य दो अवस्थाओं यानी द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। ज्ञान शक्ति, क्या ज्ञान शक्ति? कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान कृष्ण है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों से अच्छा क्या है? ज्ञान शक्ति। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा यह दूसरा महीना, सॉरी हरे कृष्ण, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो शक्ति अवस्थाओं यानी द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति से अच्छी है। द्रव्य शक्ति का क्या मतलब होता है? भौतिक जितने भी पदार्थ हैं वो, और क्रिया शक्ति मतलब जो हम कार्य करते हैं वो। लेकिन उन दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ज्ञान शक्ति। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों के विपुल संग्रह द्वारा या दूसरे शब्दों में औद्योगिक क्रियाओं के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है। ये भौतिक संस्कृति है वो पदार्थों के विपुल, मतलब बहुत सारे वस्तुएं जो हैं, पदार्थ हैं, उनके ढेर से ये जो भौतिक संस्कृति है ना, यानी कि जो संसार में वस्तुएं हैं वो द्रव्य शक्ति है, और सारे औद्योगिक कार्यकलाप यानी जो कार्य हम करते हैं, एक तो भौतिक वस्तुएं हैं, दूसरे हमारे कार्य हैं। भौतिक वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य शक्ति है, और क्रिया शक्ति क्या है? जो हमारे कार्य होते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। ये सब हमारे लिए तभी तक इम्पोर्टेंट हैं जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पा रहे। अज्ञान ही इस भौतिक द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति को के अंदर उलझने का कारण है। अगर हमें एक बार अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाए और हम हृदय से इस बात को स्वीकार कर लें कि हम ये शरीर नहीं है, तो संसार के सारे पदार्थ
और सारे कार्य, इनके अंदर जो भी हमारी आसक्ति है वो सब समाप्त हो जाएगी। अज्ञानता ही आसक्ति का कारण है। तो द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता 2.9.27 में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। अभिषेक प्रभुपाद जी आसान और बहुत ही सरल और सुंदर उपाय बता रहे हैं कि किस तरह से हम इन द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति के जकड़न से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए कौन सा श्लोक बताया? 9.27 में व्यक्त कर्म योग। कैसे करना है भगवान बताते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहो श्रीदरासि यत् तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और जो भी दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो वो सब मुझे भेंट के रूप में की जाए। जब हम अपने हर कार्य में, हर वस्तु में, हर क्रिया में भगवान को सम्मिलित करेंगे, भगवान को सेंटर पॉइंट बनाएंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तो धीरे 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 हमारी जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक बुद्धि है, व्यक्ति और वस्तुओं के अंदर जो हमारा अनुराग है वो भगवान के चरणों में प्रेम की तरह तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए भले ही हम अपने वास्तविक स्थिति को अभी अच्छी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस स्थिति के स्वीकार करने के लिए हमें अपने जीवन में कृष्ण को लाना होगा। हर कार्य में जब हम कृष्ण को केंद्र बनाएंगे तो ही हमारी सारी संकट, हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे जन्म मरण का चक्कर, हमारे सारे दुख दूर होंगे। वरना तो भले हम कुछ भी प्राप्त कर लें संसार में, कुछ भी मिल जाए अपनी क्रिया शक्ति से, कितना भी द्रव्य शक्ति हम एकत्रित कर लें, लेकिन अपने जीवन को आनंदित नहीं कर सके। इसलिए भगवान 9.28 में कहते हैं, शुभ शुभ फलई रेव मोक्ष से कर्म बंधन। आप यदि कर्मों के बंधन से छूटना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि मुझे आनंद प्राप्त हो और मैं आध्यात्मिक जगत में जहां भगवान लेते हैं वो जगत में अपना स्थान पुनः प्राप्त करूं, तो आपको